हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 13 श्लोक संख्या 23 से प्रारंभ करके आज हम वराह भगवान का प्राकट्य श्रवण करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वर्गीनया कल्पिता श्रीमद् भागवतम् प्रमाणममालम् प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधरो नापर वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बर धरुणबिम्बफल धरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखात् हरविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहम् जानि करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटीशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरि मुरारि हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवेऽपि वस्वा मृतुमेत देव गोविंद दामो धर्माधवीति जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशो जय गोपी चित छोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की तीसरा स्कंद अध्याय 13 जिसका शीर्षक है भगवान
वराह का प्राकट्य। तो हमने अब तक पढ़ा कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले चतुष्कुमार को उत्पन्न किया, उसके उपरांत रुद्र का प्राकट्य हुआ, और उसके उपरांत उन्होंने विभिन्न प्रकार के ऋषियों को उत्पन्न किया। लेकिन जब प्रकृति में जीवों की का सृजन बहुत ही थोड़ा कम हो रहा था, धीमा धीमा हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने मन से एक संकल्प किया कि अब जल्दी से सब बहुत सारी सृष्टि का सृजन करना है, तो उनके शरीर से स्वयंभू मनु और शत्रुपा का प्राकट्य हुआ। और स्वयंभू मनु ने प्रणाम करके ब्रह्मा जी से आज्ञा ली कि पिताजी आप मुझे बताइए, मेरी क्षमता के अनुसार आज्ञा दीजिए कि मुझे आपकी किस तरह से सेवा करनी है। ब्रह्मा जी ने उन्हें आदेश दिया कि आप सृजन कीजिए और संतानों को धर्म की शिक्षा दीजिए और उन्हें अपने वास्तविक लक्ष्य के विषय में बताइए। स्वयंभू मनु ने ब्रह्मा जी से कहा कि सृजन करने के लिए मैं आपकी आज्ञा का पालन तो करूं, परंतु पृथ्वी कहाँ है? मुझे वो स्थान तो चाहिए ना जहाँ पर मैं सृजन करने के बाद मेरी जो सृष्टि होगी मानव जाति वो कहाँ रहेगी। तब ब्रह्मा सोच ही रहे थे कि कहाँ से पृथ्वी को लाया जाए, क्योंकि पृथ्वी तो गर्भोदक समुद्र के अंदर चली गई थी, तो उसको कैसे वापस से बाहर निकाला जाए, कौन करेगा? मैं तो सारा दिन अपने कार्य में व्यस्त रहता हूँ, तो ये तो कोई भगवान ही कृपा करें, तो फिर भगवान की कृपा से ही संभव है। जैसे ही ब्रह्मा जी ऐसे सोच रहे थे कि भगवान कोई ना कोई कृपा करके पृथ्वी को वापस लेके आएंगे, तो अचानक से क्या हुआ, ब्रह्मा जी के नथनों से सहसा एक सूअर वराह का छोटा सा स्वरूप धारण करके प्रकट हो गया, और उनका स्वरूप अंगूठे के ऊपरी हिस्से के जितना ही था। आकाश में अद्भुत सूकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मणों तथा चारों कुमारों एवं मनु के साथ उनके अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। क्या सूकर के बहाने से यह कोई असामान्य व्यक्ति आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। प्रारंभ में यह सूकर अंगूठे के सिरे के से बड़ा न था, किंतु क्षण भर में वह विशाल शिला के समान बन गया। तो ब्रह्मा जी कहते, मेरा मन क्षुब्ध हो रहा है, क्या ये परम पुरुष भगवान ही है जो कि वराह के स्वरूप में आए हैं? अभी वो सोच ही रहे थे कि वराह भगवान ने जोरदार गर्जना की। तो यहां से हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 23। कृपया अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मण सहसोनुभि भगवान यज्ञ पुरुषो जगर्जकेन्द्र सन्निभि। इति मीमांसतस्य, इति माने इस प्रकार, मीमांसता मतलब विचार विमर्श कर रहे थे कि क्या है ये, कहां से आ गया, मेरी नाक से कैसे निकला। तो तस्य यानी उस ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा के सह साथ साथ सुनु भी उनके पुत्रगण जब ये विचार कर रहे थे सब ब्रह्मा जी और उनके पुत्र, भगवान यज्ञ पुरुषो, भगवान मतलब परमेश्वर, ईश्वरों के ईश्वर, यज्ञ अर्थात भगवान विष्णु ने, पुरुष सर्वश्रेष्ठ भगवान ने क्या किया, जगर्ज का मतलब होता है गर्जना की, और अग इंद्र अर्थात विशाल पर्वत, सन्निभि अर्थात सदृश, जैसे विशाल पर्वत आपस में टकराते तो कैसी गर्जना होती है, ऐसी गर्जना भगवान ने सूकर स्वरूप में की। अनुवाद, जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि विशाल पर्वतों में भी उनकी गर्जना शक्ति होती है, क्योंकि वे भी जीव हैं। ध्वनि गर्जन की गहनता भौतिक शरीर के आकार के अनुपात में होती है। अभी ब्रह्मा जी भगवान के सुकर अवतार के प्रकट होने के विषय में अनुमान लगा ही रहे थे कि भगवान ने अपनी गंभीर वाणी द्वारा गर्जना करके ब्रह्मा के अनुमान की पुष्टि लगाई। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं, ब्रह्माणं हर्षय आमास हरिस्तांश्च द्विजोत्तम स्वगर्जितेन ककुभ प्रतिस्वनया नयता विभु। ब्रह्माणं हर्षयामास, ब्रह्माणं अर्थात ब्रह्मा जी को हर्षयामास अर्थात जीवंत कर दिया, बहुत ज्यादा आनंदित कर दिया। जैसे ब्रह्मा जी भी सोच रहे थे ना कौन है, और इतनी विशाल गर्जना हुई तो ब्रह्मा जी को आनंदित कर दिया। किसने? हरि, हरि का मतलब होता है भगवान ने। तान, तान का मतलब होता है उन सब को। च भी, द्विजोत्तम अति उत्तम जो ब्राह्मण वहां पर थे उन सबको भी। स्वगर्जितेन अपनी साधारण असाधारण वाणी से। ककुबह अर्थात सारी दिशाएं। प्रति स्वनयता अर्थात प्रति ध्वनित हो गई। विभु यानी सर्वशक्तिमान। अब ये लोग सब सोच ही रहे थे और भगवान की गर्जना से सारी दिशाएं गूंजने लगी और ब्रह्मा जी और सारे जितने भी वहां पर ऋषि गण थे, द्विज गण थे, वो सब आनंदित हो गए। अनुवाद, सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसे गर्जना कर के ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों को जीवित कर दिया, जिससे सारी दिशाएं गूंज उठी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के तो ब्रह्मा तथा अन्य उत्तम ब्राह्मण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते हैं, भगवान को नाना अवतार में से किसी एक में प्रकट होते देखकर जीवित होते हैं। पर्वत सदृश सूकर के रूप में विष्णु के अद्भुत तथा विराट अवतार का प्राकट्य होने पर उनमें किसी प्रकार का भय उत्पन्न नहीं हुआ। यद्यपि भगवान की गूंजती हुई वाणी कोलाहल पूर्ण थी और इसी दशाओं में भयानक रूप से प्रतिध्वनित हुई, मानो उन असुरों के लिए खुली धमकी हो जो उनकी सर्वशक्तिमत्ता को चुनौती दे रहे हैं। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान चाहे कोई भी स्वरूप धारण करें तो उनके जो भक्तगण होते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं, वो बहुत आनंदित होते हैं। वास्तव में भक्तों का जीवन ही है भगवान के जो अवतार होते हैं उनकी कथा श्रवण करना, और वो तो कितने ज्यादा भाग्यवान होते हैं जिनको भगवान के उन अवतारों के अंदर, लीलाओं के अंदर सहयोग करने का अवसर मिलता है। लेकिन भगवान की ये जो लीलाएं हैं उनके अंदर सहयोग करना, उनके लीलाओं के अंदर भाग लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भगवान की कथाओं को श्रवण करना। जब भी भगवान की अवतार की कथा श्रवण करने को अवसर मिले तो हमको यही समझना चाहिए कि हम भी वहीं पर भगवान के उस अवतार का दर्शन कर रहे हैं। तो ये भगवान का प्रथम अवतार भागवतम में हुआ है, जिसमें भगवान सूकर स्वरूप धारण करके आए हैं और अत्यंत ही अद्भुत स्वरूप है कि जिसको देखकर सारे ब्रह्मा जी और सारे ऋषिगण आश्चर्यचकित हो रहे हैं, और जैसे ही भगवान के मुख से गर्जना हो रही है तो सबको ऐसा लग रहा है कि नई जीवन शक्ति प्राप्त हो रही है। और जैसे ही भगवान की ऐसी गर्जना वाली आवाज सुनी, सब आनंदित होकर भगवान की स्तुति करने लगे। निशम्यते कर घरितम स्वखेद क्षयिषु माया मय सूकरस्य जनस्तपः सात्यनिवासिनस्ते स्त्री भी पवित्र मुनयो गृणन्सम् निशम्यते घर घरितम स्वेद। निशम्य मना सुनकर, ते मना वे सब जितने भी महर्षि थे, ब्रह्मा जी थे, घर घरितम यानी कोलाहल पूर्ण ध्वनि, गुरगुराहट जो जैसे सूकर जोर जोर से पर्वत की तरह गुर्रा रहा था, तो स्वखेद तो निजी खेद क्षण क्षण विनष्ट करने वाला। जब भगवान की ध्वनि निकल रही थी तो हृदय के अंदर जो भी खेद था ना ब्रह्मा जी के कि अब कैसे पृथ्वी को निकाला जाए, वो सारा समाप्त हो गया, विनष्ट क्षय क्षण मतलब सारा दुख खत्म हो गया। मायामय अर्थात सर्व कृपालु सूकरस्य, सूकर का और उससे जनलोक जन तपस्य निवासी नस्ते, जनलोक तपलोक सत्यलोक के निवासी ते वे सभी क्या करने लगे। अनुवाद, जब जनलोक तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान सूकर की कोलाहल पूर्ण वाणी सुनी जो सर्व कृपालु भगवान की सर्व कल्याणमयी ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्रों का उच्चारण किया। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक में मायामय शब्द अत्यंत सार्थक है। माया का अर्थ है कृपा, विशेष ज्ञान तथा मोह, इसे भगवान शुकर सर्वस्य हैं। वे दयालु हैं, वे समस्त ज्ञान हैं और वे मोह भी हैं। वरा अवतार के रूप में उन्होंने जो ध्वनि की उसका उत्तर जनलोक तपलोक तथा सत्यलोक में रहने वाले मुनियों ने वैदिक मंत्रों से दिया। उन लोकों में सर्वोच्च बुद्धिमान तथा पवित्र जीव निवास करते हैं, अतः जब उन्होंने वराह की असाधारण ध्वनि सुनी तो यह समझ गए कि यह विशेष ध्वनि भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी की नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने वैदिक मंत्रों से भगवान की प्रार्थना करते हुए उसका उत्तर दिया। यद्यपि पृथ्वी कीचड़ में घुसी हुई थी किंतु भगवान की ध्वनि सुनकर उच्चतर लोकों के निवासी परम हर्षित हुए, क्योंकि वे जान गए थे कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वहां थे। अतएव ब्रह्मा तथा सारे साधुगण यथा भृगु ब्रह्मा के अन्य पुत्र तथा विद्वान ब्राह्मण जीवित उठे और उन्होंने मिलकर वैदिक मंत्रों की दिव्य ध्वनि से भगवान की प्रशंसा करने में उनका साथ दिया। सबसे महत्वपूर्ण मंत्र बृहन्नारदीय पुराण का मंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव भक्तों, जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो इससे ज्यादा शुभ और कुछ नहीं हो सकता एक भक्त के जीवन में। और भगवान को संतुष्ट करने के लिए जब, और इससे अधिक हम क्या करें कि भगवान के इन शब्दों को भगवान को सुनाए, भगवान के इस पवित्र नाम को, इस स्तुति को भगवान को सुनाए। इसलिए जितने भी ऋषि गण थे, ब्रह्मा गण थे, भृगु मुनि थे, उन्होंने जैसे ही समझ लिया भक्त जान जाता है कि मेरे साथ मेरा भगवान है और वो हर समय भगवान की स्तुति करता है महामंत्र का उच्चारण करके, और जब उसके मुख से ये स्तुतियां निकलती हैं, ये पवित्र नाम की ध्वनि निकलती है, तो भगवान अत्यंत ही हर्षित होते हैं। मैत्रेय मुनि कहते हैं तेषां सतां वेदवीतानमूर्ते ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादम् वीनात्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविशेष। तेषां सतां, तेषां मतलब उन, सत्ता मतलब महान भक्तों के, वेद अर्थात संपूर्ण ज्ञान वितान मूर्ति यानी विस्तार का स्वरूप। जब उन्होंने इतने सुंदर वेदों की स्तुतियां की, ब्रह्म अर्थात वैदिक ध्वनि अवधार्या अर्थात इससे ठीक जानकर आत्मा अपना गुणानुवाद दिव्य गुणगान, तो भगवान को पता चल गया कि ये दिव्य गुणगान तो मेरा ही हो रहा होगा, क्योंकि वेदों का लक्ष्य तो भगवान की स्तुति ही है। तो वराह भगवान बहुत प्रसन्न हुए। विनद्य भूयो, विनद्य मतलब प्रतिध्वनित, भूय मना पुनः, विबुद्ध अर्थात विद्वानों के उदाय यानी लाभ या उत्थान हेतु। फिर गजेंद्र लीलो जलमा विशेष, गजेंद्र लीलो अर्थात हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए जल यानी जल में आविशेष प्रविष्ट हुए। अनुवाद, हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य हैं, अतः वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही हैं। तो जब भक्त लोग स्तुति कर रहे थे तो भगवान को पता है कि वो मेरी स्तुति कर रहे थे, तो भगवान उत्तर में पुनः हाथी की तरह चिंगार कर गर्जना करके उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे, ताकि भगवान रिस्पॉन्स दे रहे थे कि हाँ मैं तुम्हारी स्तुतियों से बहुत प्रसन्न हो रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते भगवान का कोई भी रूप दिव्य तथा ज्ञान एवं करुणा से पूरित होता है। भगवान समस्त भौतिक कलमश का विनाश करने वाले हैं, क्योंकि उनका स्वरूप साक्षात वैदिक ज्ञान है। सारे वेद भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं। वैदिक मंत्रों में भक्तगण भगवान के चमचमाते तेज को हटाने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यह उनके असली मुखमंडल को आच्छादित कर देता है। ईशोपनिषद में कथन है, भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं होता। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान की जो ये ज्योति है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, वो तो भगवान के स्वरूप को ही क्योंकि इतना तेज होता है तो उसको आच्छादित कर देती है। तो जो भक्तगण होते हैं वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कृपया भगवान इस ज्योति को, इस ब्रह्म तेज को हटाइए, ताकि हम आपके सुंदर मुखमंडल को दर्शन कर सके। तो भगवान का चाहे कोई भी स्वरूप हो, वो ज्ञान और करुणा से पूरा भरपूर होता है। और जब भक्त भगवान का दर्शन करता है तो भगवान के स्वरूप का दर्शन करके उसके सारे कलमश, सारे विघ्न विनाश हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो स्वरूप होता है वो दिव्य होता है। इसलिए भक्त की सदैव इच्छा रहती है भगवान के दर्शन करने की। जब भक्त किसी कारण से भगवान के दर्शन नहीं कर सकता या कहीं दूर जाता है, तो बेचैन हो जाता है कि मुझे कितने दिन हो गए, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान को स्मरण कर रहा होता है कि भगवान मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाओ। यहाँ पर जितने भी भक्त हैं उनकी एक इच्छा रहती है सदैव कि हम कभी वृंदावन में जाएं और वृंदावन में जाकर भगवान के दर्शन करें, क्योंकि भगवान ने कहा ना, वृंदावनम परित्यजम पादम एकम न गच्छति। तो इस तरह से भक्त जो है वो सदैव भगवान के वास्तविक स्वरूप के दर्शन करना चाहता है। इसीलिए ईशोपनिषद में ब्रह्म तेज को भी नकारा गया है कि नहीं, हमको भगवान के स्वरूप के दर्शन करने हैं। भगवान के कोई भौतिक रूप नहीं होता है, किंतु उनके स्वरूप को सदैव वेदों के स्वरूप में समझा जाता है। वेदों को भगवान की सांस कहा गया है, और वह सांस वेदों के आदि जिज्ञासु ब्रह्मा के अपने भीतर खींची थी। ब्रह्मा के नथनों से ली गई सांस के से भगवान प्रकट हुए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी के भगवान किस तरह से और क्यों कर ब्रह्मा जी की नासिका से उत्पन्न हुए, उसका उत्तर देते हैं कि भगवान वेद जो है वो भगवान की सांस है, और वह सांस वेदों के आदि जिज्ञासु ब्रह्मा जी ने अपने अंदर खींच ली थी। मतलब उस पूरे वेद का आस्वादन किया और जैसे ही खींच ली तो ब्रह्मा जी के जो अंदर गया वही तो बाहर भी निकलेगा ना, तो वेदों के स्वरूप में अंदर गया और सूख करके स्वरूप में बाहर निकला। ब्रह्मा के नथनों से ली गई सांस से भगवान सूख कर प्रकट हुए। अतः भगवान का शुक्र अवतार साक्षात वेद है। उच्च लोकों के मुनियों द्वारा अवतार का महिमा गान वास्तविक वैदिक मंत्रों से युक्त था। जब भी भगवान का महिमा गान होता है तो यह समझ जाना चाहिए कि वैदिक मंत्रों का ठीक से उच्चारण किया जा रहा है। अतएव जब वैदिक मंत्रों का उच्चारण हुआ तो भगवान बहुत प्रसन्न हुए और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए पुनः एक बार उन्होंने गर्जना की और निमग्न पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रविष्ट हो गए। उत्क्षिप्त वाला खचरा कठोरा सत्ता विधुन्वन खर रोम शत्वा खुरा हताभ्रा सितदास्त्र ईक्षा ज्योतिर्भासे भगवान महीद्र। उत्क्षिप्त वाला अर्थात वाला कहते पूछ को, उत्क्षिप्त मतलब उनको फटकारते हुए, खचर अर्थात आकाश में कठोर अति कठोर सट्टा यानी कंधे तक लटकते हुए जो बाल थे, विधुन्वन हिलाते हुए, और खर तेज रोमश त्वक, रोम कहते हैं रोमकूप और त्वक मतलब त्वचा के, जो उनकी रोओं से भरी हुई जो त्वचा थी उसको हिला रहे थे। खुर आहट खुरों से टकराया, आभ्र बादल, स्तदृष्ट सफेद दाढ़, ईक्षा अर्थात चितवन, ज्योति यानी चमकीली, बभास यानी तेज निकालने लगा, और भगवान का मतलब है भगवान, कौन से भगवान, मही द्रह, मही कहते पृथ्वी को, द्रह मतलब धारण करने वाले, यानी पृथ्वी का मतलब होता है संसार, ये जगत है उसको धारण करने वाले भगवान क्या कर रहे थे। अनुवाद देखिए, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ी से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते जब भक्तों द्वारा भगवान की स्तुतियां की जाती हैं तो उनके दिव्य कार्यों का ही वर्णन होता है। भगवान वराह के कुछ दिव्य गुण यहाँ पर दिए गए हैं। चूंकि तीनों उच्च लोकों के निवासियों ने भगवान की स्तुतियां की, अतः ये समझा जा सकता है कि उनका शरीर सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि उनकी आंखें सूर्य तथा चंद्रमा हैं, अतएव आकाश पर उनकी चितवन सूर्य या चंद्रमा जितनी चमकीली थी। यहाँ पर भगवान को महीद्र कहा गया है जिसका अर्थ है विशाल पर्व अथवा पृथ्वी को धारण करने वाला। दूसरे शब्दों में भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था, अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपनी श्वेत दाढ़ों के सहारे किस तरह धारण करते। भगवान को महान भक्त कविवर जयदेव ने इस घटना को अवतारों की अपनी स्तुति में इस प्रकार गाया है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बता रहे हैं कि भगवान, हम सोच सकते हैं भगवान कितने विशाल होंगे, ये पृथ्वी जो है उनके दांत के ऊपर एक छोटी सी जो क्रिकेट की गोंद है ना, उतनी गेंद की जैसे लग रही थी। तो भगवान कितने विशाल थे और कितने सुंदर थे, भगवान के बाल, भगवान के चमचमाती हुई त्वचा, भगवान के रोम, भगवान की गर्जना, वो सब दिव्य थे। और जयदेव गोस्वामी अपने दशावतारों की स्तुति में कितना सुंदर वर्णन करते हैं भगवान के स्वरूप का। वे कहते हैं,
वसति दशन शिखरे धरणी तवलग्ना शशिनी कलंक कलेव निमग्ना केशवधीरता सुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे जय केशवधीरत सुकर रूपा जय जगदीश हरे।
तो भगवान केशव कृष्ण की जय हो जो शुकर के रूप में प्रकट हुए और क्या कर रहे हैं, वसति दशन शिखरे धरणी तवलग्ना, पृथ्वी उनकी दारों के बीच में पकड़ी हुई थी और कैसे लग रही थी,
शशिनी कलंक कलेवनी मग्ना।
शशि कहते हैं चंद्रमा पर, और चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसी प्रतीत हो रही थी, मतलब जैसे भगवान के जो दांत थे वो चंद्रमा जैसे लग रहे थे और पृथ्वी ऐसे लग रही थी जैसे चंद्रमा पर हम कभी कभी दांत वो दाग देखते हैं ना, तो ऐसे लग रहे थे इतने सुंदर भगवान। और उन्होंने जो पृथ्वी उठाई हुई थी उनका स्वरूप उसको बहुत ही सुंदर जयदेव गोस्वामी बताते हैं। आगे मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं,
ग्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिग्रन् क्रोडापदेश स्वयमत्वरांग कराल द्रष्टोप्य कराल द्रप्पा कराल द्रष्टोप्य कराल त्रिप्या मुद्वीक्ष्य विप्रान् ग्रणतो विशत् किम्। कराल द्रष्टोप्य कराल त्रिप्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् ग्रणतो विशत्कम्। ग्राणेन पृथ्व्या, ग्राण कहते गंध जो होती ना पृथ्वी के अंदर उसको सूंघ रहे थे, ग्राण मतलब सूंघने से पृथ्वी में ना पृथ्वी की पदवी अर्थात स्थिति विजिग्रन यानी पृथ्वी की खोज करते हुए, और क्रोड़ उपदेश सूकर का शरीर धारण किए हुए अर्थात उन्होंने सूकर का शरीर धारण किया था, तो सूकर किस तरह से सूंघ के वस्तु को प्राप्त करता है इसी तरह भगवान पृथ्वी सूंघ रहे थे और पृथ्वी को ढूंढ रहे थे। स्वयं यानी स्वयं उद्वरा, उद्वरा कहते हैं दिव्य को, अंग यानी शरीर, उनका जो शरीर था वो दिव्य था और कैसा था, कराल द्रष्टु, कराल कहते भयावता और द्रष्टु अर्थात दाढ़े उनकी बहुत ही भयानक लग रही थी, और अब भी उसके बावजूद अकराल दृग्भ्याम, अकराल मतलब भयावना नहीं, दृग्भ्याम अर्थात अपनी चितवन दांतों से तो ऐसा लग रहा था कि किसी राक्षस को मारने के लिए है, लेकिन उनकी दृष्टि जो थी चितवन जो थी वो बहुत ही सौम्य थी, बहुत ही आनंदमय थी, इसलिए उद्वीक्ष विप्रान दृष्टि दौड़ाकर अपने जितने भी विप्र थे, विप्र माना भक्तगण जो थे ब्राह्मण जो थे उनकी ओर भगवान ने अपनी दृष्टि दौड़ाई उद्वीक्ष विप्रान, और ग्रणत उस्तुति में लीन अविशत अर्थात प्रवेश किया जय किम, कम का मतलब होता है अविश, कम का मतलब होता है जल में। अब वो जब भगवान इतने जोर जोर से घुरा रहे थे, अपनी पूंछ को फटकार रहे थे, उनके जो बाल थे वो ऐसे वो हिला रहे थे कि बादल बिखर रहे थे, तो वो सब तो स्तुति कर रहे थे और भगवान जो है उनकी दृष्टि इतनी कोमल और इतनी सौम्य, इतनी हृदय को सांत्वना देने वाली थी, इसलिए भगवान ने उन सब भक्तों के ऊपर अपनी दृष्टि दोहराई और फिर जेल में प्रवेश हो गए। श्रील अनुवाद देखिए, वे साक्षात परम प्रभु भगवान विष्णु थे, अतएव दिव्य थे, फिर भी सूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उसकी गंध से खोज निकाला। उनकी दारें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दोहराई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। हमें श्रील प्रभुपाद जी कहते, हमें ये सदैव स्मरण रखना होगा कि यद्यपि सूकर का शरीर भौतिक होता है, किंतु भगवान का सूकर रूप में भौतिकता से कलमश ग्रस्त नहीं था। किसी पार्थिव सूकर के लिए संभव नहीं कि वह ऐसा विराट रूप धारण कर सके जो सत्य लोक से लेकर पूरे आकाश में फैला हुआ हो। उनका शरीर सभी परिस्थितियों में दिव्य होता है, अतएव सूकर रूप में धारण करना उनकी लीला मात्र है। उनका शरीर संपूर्ण वेद है, यह दिव्य है, किंतु क्योंकि उन्होंने सूकर रूप धारण किया था, अतएव वे सूकर की तरह सूंग कर पृथ्वी को खोज कर रहे थे। भगवान किसी भी जीव की भूमिका पूरी तरह से निभा सकते हैं। शुकर का विराट रूप निश्चय ही समस्त अभक्तों के लिए अति भयावना था, किंतु भगवान के शुद्ध भक्तों के लिए वे तनिक भी भयावना नहीं था। विपरीत इसके, वे अपने भक्तों पर इतनी प्रसन्नता से दृष्टिपात कर रहे थे कि सब के उन सबों के दिव्य सुख का अनुभव हो रहा था। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जैसे ही भगवान उस समुद्र के अंदर, जहाँ गर्भोदक्ष जो समुद्र है उसके अंदर, जहाँ पर पृथ्वी अंदर धसी हुई थी, उसको निकालने के लिए जैसे ही भगवान ने गोता लगाया अंदर, तो भगवान का इतना विशाल शरीर था कि समुद्र के अंदर जैसे ही भगवान गए तो भगवान के जाने से समुद्र दो टुकड़ों में ऐसा लग रहा है बट गया, और जो भगवान के अंदर जाने से समुद्र की जो लहरें उठी ना, इतना ऊपर हो गई, इतना विशाल लहरें हुई कि ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र दोनों हाथ ऊपर उठाकर भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आप मुझ पर कृपा कीजिए, कृपया मुझे दो टुकड़ों में विभाजित मत कीजिए।
सवज्रकूटांगनी पातवेक विषीर्ण कुक्षी तनयन्नुधन्वान् उत्सृष्ट दीर्घोर्मिभुजैरिवार्ताश् चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति। स वज्रकूटा, स वज्र, वज्र कहते हैं विशाल पर्वत जैसा, कूट अंग उनका जो शरीर था विशाल पर्वत के जैसा था। निपात वेग, डुबकी लगाने का वेग, और उन्होंने बहुत ही वेग के साथ डुबकी लगाई। विशीर्ण, विशीर्ण का मतलब होता है दो भाग करते हुए, कुक्षी मध्य भाग को, स्तनयन यानी उनके समान गुंजाते हुए, उदनवान यानी समुद्र बहुत गूंज उठा, जैसे ही इतना विशाल शरीर अंदर गया तो जोर से आवाज हुई, और उसके उत्तृष्ट दीर्घ, उत्तृष्ट यानी उत्पन्न करके, दीर्घ यानी ऊंची, ऊर्मी यानी लहरें, बहुत ही ऊंची लहरें, कैसे भुजे यानी बाहों से, इव आर्त यानी दुखी पुरुष की तरह। ऐसा लग रहा था जब कोई दुखी पुरुष होता है तो कैसे हाथ ऊपर करके प्रार्थना करता है, तो समुद्र में भी जब इतना विशाल सूकर रूप में भगवान ने गोता लगाया तो दोनों बाहें ऊपर हो गई, मतलब दो बड़ी बड़ी लहरें साइड से आने लगी। चक्रुष, तेज स्वर से स्तुति की। यज्ञ ईश्वर, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, पाही मेती यानी पाही का मतलब होता है कृपा बचाइए, जैसे जब किसी के ऊपर कष्ट होता है ना तो ऐसे बोलते हैं ना, पाही माम अर्थात कृपा कीजिए। माम का मतलब होता है मुझ पर। इति इस प्रकार अनुवाद। दानव आकार पर्वत की भांति जल में गोते लगाते समय भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया, और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह प्रकट हुई जो उच्च स्वर से
आर्त नाद कर रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड न करें, कृपा करके मुझे संरक्षण प्रदान करें। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, दिव्य सूकर के पर्वत जैसे शरीर के आ गिरने से महान सागर तक विचलित था और वह भयभीत प्रतीत हो रहा था, मानो मृत्यु निकट आ गई हो। इतनी जोरदार गर्जना होने के उपरांत भगवान वराह जो है वो समुद्र के अंदर चले गए और अंदर उन्होंने ढूंढ निकाला पृथ्वी को। वो एक कोने में पड़ी हुई थी, जिस तरह से एकदम शांत, जिस तरह से वो स्टार्ट में थी, उसी तरह से अभी तक पड़ी हुई थी, और भगवान ने उस पृथ्वी को अपने ऊपर उठा लिया। खुरै क्षुरपैर दरयंस्तदाप उत्पार पारम त्रिपरूरसायम ददर्शगम तत्र सुषुप्त सुर्गे यां जीवधानीं स्वयमप्यदत्त। खुरै, खुरै कहते हैं खुर को, क्षुरपाय, क्षुरपाय यानी तेज हथियार के समान, और दरयन यानी घुसकर, तत् वह आप यानी जल में, वो जल में घुस गए और उस समय उत्पार पारम त्रिपरूरसायम, उत्पार पारम असीम की सीमा मापली, समुद्र की सीमा के अंदर चले गए। त्रिपरू अर्थात सभी यज्ञों के स्वामी, रसायम यानी जल के भीतर, ददर्श पाया गाम पृथ्वी को, तत्र वहां सुषुप्सु लेटे हुए अग्रे प्रारंभ में, याम जिसको, जीव धानीम यानी सभी जीवों की विश्राम स्थली, स्वयं स्वयं अभ्यदत्त, अभ्यदत्त मना स्वयं ही अपने ऊपर उठा लिया। अनुवाद, भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा माप ली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं उठा लिया। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी रसायाम का अर्थ रसातल अर्थात निम्नतम लोक निकाला जाता है, किंतु श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस प्रसंग में यह लागू नहीं होता। पृथ्वी अन्य लोकों अर्थात तल, अतल, तलातल, वितल, रसातल, पाताल इत्यादि की उपेक्षा सात गुनी श्रेष्ठ है, अतः पृथ्वी रसातल लोक में स्थित नहीं हो सकती। विष्णु धर्म में वर्णन हुआ है, वे बताते हैं, पाताल मूलेश्वर वरभोग संहतो वीनस्य पादौ पृथ्वीं च बिभ्रत यस्योपमानो न बभूव सोच्युतो मामास्तु मांगल्य विवृद्धये हरि। अतेव भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर के पेंदों में पाया, जहां ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के समय सारे लोग विश्राम करते हैं। तो यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि पृथ्वी रसातल में जा ही नहीं सकती। यहाँ पर लिखा हुआ ना सेकंड लाइन में उत्पार पारम तिरुपम रसायम, तो ये रसातल वाला जल नहीं था, बल्कि गर्भोदक सागर का जल था, वो जगह जहां पर सारे, जब प्रलय होती है तो सारे जितने जीव गर्भोदक सागर में शयन करते हुए भगवान के अंदर शरीर के अंदर आकर विश्राम करते हैं, वहीं पर पृथ्वी गई हुई थी। तो वहां से सूकर रूप में भगवान वराह ने उन्हें अपने ऊपर उठा लिया, और उसके बाद क्या किया, स्वद्रष्टयोद्धृत्य माहीं निमग्नां स उत्थितः सं रुरुचे रसाया तत्रापि दैत्यं गदयापपतन्तं सूनाभसन्धि पितितीव्र मन्यु स्वदृष्टयो, स्वदृष्टयो यानी अपनी धाड़ों पर जो बड़े बड़े दांत थे ना उनके उनके ऊपर उद्धृत्य उठाकर महिम यानी पृथ्वी को निमग्ना अर्थात डूबी हुई जो पृथ्वी थी अपने दारों पर उन्होंने उठाया। स उत्थित सौ रुरुचे रसाया, स उत्थित स मतलब उसने उत्थित माना ऊपर उठाकर सौ रुरुचे अर्थात अतीव भव्य दिखाई पड़ा रसायाम यानी जल से। जब भगवान जल से बाहर निकल रहे थे पृथ्वी उनकी धारों पर रखी हुई थी तो इतने भव्य लग रहे थे। तत्र वहां पर अपि भी तो वहां पर क्या हुआ, दैत्यम गदया पतितम, दैत्यम मतलब असुर को गदया मना गदा से आपतंतम अर्थात उसकी ओर दौड़े और भगवान जो है उनके दैत्य की ओर दौड़े। सुनाभ अर्थात कृष्ण का चक्र संदीपित चमचमाता हुआ अति भयानक यानी अमन्यु यानी क्रोध, और उस जो हिरण्याक्ष था उसने तो भगवान को रोका ना कि भाई आप क्यों मेरी पृथ्वी को मैंने रखा आप इसको क्यों लेकर जा रहे हो, तो भगवान ने उसके ऊपर बहुत क्रोध किया और बहुत क्रोध से करने के बाद उसको मार डाला। हनुमान देखिए, भगवान वराह ने डूबी हुई बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपने दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल के बाहर निकाल आए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था और उन्होंने तुरंत ही उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहे थे। श्रीला प्रभुपाद की, श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रीला जीव गोस्वामी के अनुसार वैदिक ग्रंथों में भगवान वराह के अवतार का वर्णन दो विभिन्न प्रलयों यानी चाक्षुष प्रलय और स्वयंभुव प्रलय में हुआ। वराह का यह विशेष अवतार वस्तुतः स्वयंभुव प्रलय में हुआ जब उच्चतर लोकों यानी जन महर तथा सत्य को छोड़कर शेष सारे लोग प्रलय जल में डूब गए थे। वराह के इस अवतार को उपर्युक्त लोकों के निवासियों ने देखा था। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि मुनि मैत्रेय ने विभिन्न प्रलयों के दोनों वराह अवतारों को एक में मिलाकर उनका सारांश रूप विदुर जी के समक्ष रखा था। आगे मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जब भगवान ने उस असुर हिरण्याक्ष को मारा तो भगवान के जो दांत थे वो उसके रक्त से रंग गए और ऐसे लग रहा था जैसे हाथी जब पृथ्वी को खोदता है तो उस समय जैसे लाल लाल हो जाता है ना, तो पूरा भगवान का शरीर जो है उनके गाल उनका मुख उनका उनके दाढ़े पूरी रक्त से सन गई थी। मैत्री मुनि कहते हैं जगानरुंधानमसह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्बसे तद्रक्तपंकांकितगंडतुंडो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभिन्ना जगतिं विबिंदन जगान रुंधान, जगान मतलब वध कर दिया, रुंधानम यानी अवरोध उत्पन्न करने वाले शत्रु जो हिरण्याक्ष जो अवरोध अवरोध मतलब वो रोक रहे थे ना पृथ्वी लेके जाने नहीं दे रहे थे तो उसका वध कर दिया। असह्य यानी असहनीय विक्रमम पराक्रम से बहुत ही जोरदार पराक्रम से युद्ध किया और सह यानी उसने लीलया सरलता पूर्वक इभम यानी हाथी और मृगराट यानी सिंह इव सदृष्ट जिस तरह से हाथी बहुत ही पराक्रम से युद्ध करता है लेकिन फिर भी सिंह जो है हाथी को मार डालता है बहुत ही आसानी से कुचल कर खा जाता है उसी तरह से वो बहुत ही पराक्रम से युद्ध कर रहा था और मृगराट इव यानी सिंह जिस तरह से हाथी को मार डालता है उसी तरह अम्बस यानी जल के अंदर और तत्रक्त पंका तत्रक्त मतलब उसके रक्त से पंक अंकित यानी कीचड़ से रंगा हुआ गंड अर्थात गाल, तुंड अर्थात जीभ, गंड तुंडे यानी उनका गाल और उनका जीभ, यथा मानो गजेंद्र यानी हाथी जगति यानी पृथ्वी को विभिदन अर्थात जब उसको खोदता है तो, अनुवाद सॉरी तात्पर्य अरे सॉरी इसका अर्थ है तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मार डालता है, भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह रंग गए थे जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। जब वराहदेव भगवान पृथ्वी को गर्भोदक सागर से ऊपर लेके आ रहे थे, उस समय हिरण्याक्ष ने अवरोध किया कि नहीं, आपको मैं लेके नहीं जाने दूंगा। तो और बहुत ही पराक्रम से भगवान के साथ युद्ध किया, बहुत ही पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन भगवान ने उसको बहुत ही सरलता से मार डाला। और जब तक भगवान उनके साथ युद्ध कर रहे थे तो पृथ्वी को साइड में रखा था, और जैसे ही वो मर गया उसके बाद क्या किया, तमाल नीलम सितदंत कोट्या तमाल नीलम सितदंत कोट्या क्ष्मामुत्तखि क्षिप्तम गजलीलयांग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकै विरिञ्च मुख्या उपतस्तुरीशम तमाल नीलम। भगवान का जो शरीर है वो एक तमाल का वृक्ष, जो नीला वृक्ष होता है उसका नाम तमाल का वृक्ष है, उसके जैसा लग रहा था। नीलम यानी नीले रंग का, सित अर्थात श्वेत या साफ, दंत यानी दांत, दांत बिल्कुल सफेद कलर के चमक रहे थे, और उनका जो शरीर था वो तमाल के वृक्ष के जैसा नीला लग रहा था। कोटिया मतलब टेढ़े किनारे वाले, उनके दांत कैसे थे, ऐसे टेढ़े थे जैसे सुकर के दांत हमने वराह स्वरूप में देखे ना भगवान के। क्ष्माम अर्थात पृथ्वी, उत्क्षिपंतम यानी लटकाए हुए, गजलीलया हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए, जैसे हाथी होता है ना अपने सूंड पर कोई चीज को कैसे उठाता है, उसी तरह से उनके ऐसे टेढ़े से दांत थे ना, उसके ऊपर पृथ्वी को इतना रखा तो इतना सुंदर लग रहे थे। और अंग हे विदुर प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनु वाकय, प्रज्ञाय मतलब इसे जान लेने पर, बद्ध यानी जोड़े हुए, अंजलया हाथ, जब भगवान को इस तरह से हिरण्यक्ष को मारने के बाद पृथ्वी को उठाए हुए देखा तो जितने भी वहां पर ऋषि मुनि थे और ब्रह्मा जी थे सब प्राणजलयो अर्थात हाथों को जोड़कर अनुवाकय, इस तरह से वेदों के मंत्रों से वेरंची यानी ब्रह्मा, मुखिया यानी इत्यादि, उप तस्थु यानी उस्तुति कर, उस्तुति की ईशम यानी भगवान की। अब तो उनको पता चल गया ना कि ये साक्षात भगवान है, और किस तरह से उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा है, और पृथ्वी की, क्योंकि सबकी इच्छा थी ना पृथ्वी की सुरक्षा हो, पृथ्वी को पुनः स्थापित किया जाए, तो फिर भगवान के इस कार्य से सारे देवी देवता बहुत बहुत प्रसन्न हुए और भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए स्तुति करने लगे। अनुवाद देखिए, तब हाथी की तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर लटका लिया। उनके शरीर का वर्णन तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया, और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। श्रीला प्रभुपाद की जय। बोल वराह भगवान की जय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। आज हमने भगवान के वराह स्वरूप के विषय में सुना, हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्री प्रभुपाद जी हमें इतने सुंदर रीति से भगवान की इस महान कथा को श्रवण करा रहे हैं। हरे कृष्ण।